سلامتی کے لیے خطرہ ہونے کے الزام کے تحت پابندیاں عائد کی گئی تھیں. آپ کو پتا ہے کہ ایون گوگل نے کہا تھا کہ ان کے کوئی بھی سسٹمز کو ان کے ہواوے کے جو 5G کمیونیکیشن ہے وہ نہیں استعمال کر سکے گا, نیٹ ورک کو, ان کے براؤزرز کو نہیں استعمال کر سکے گا. تو ہواوے نے کہا ہے کہ ہم اپنا براؤزر بھی لے آئیں گے, اینڈ اٹس ان دا آن دا وے. ہواوے اور روسی کمپنی کے درمیان معاہدے کے تحت دونوں کمپنیاں روس میں, روسیا میں 5G پر مل کر کام کریں گی. 2019 اور 2020 کے دوران تجرباتی بنیادوں پر اس ٹیکنالوجی کو لانچ کیا جائے گا. آپ کو یاد ہی ہوگا کہ ہواوے کا امریکہ کے ساتھ تنازع چل رہا ہے, یعنی یہ بنیادی طور پر تجارتی جنگ, کولڈ وار بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. امریکہ نے اپنے اتحادیوں سے بھی کہا ہے کہ یہ جو ہواوے ہے اس کے ساتھ ڈیل نہ کریں. جیسے میں نے ابھی پہلے کہا کہ چائنا بھی اور کینیڈا بھی اسی کی کانسیکوینسز برداشت کر رہا ہے, کیونکہ چائنا نے بہت سی چیزوں پہ پابندیاں لگا دی, ہماری ڈیری پروڈکٹس کے اوپر پابندیاں لگائیں اور بہت ساری چیزوں کے اوپر. ہمارے ایک بندے کو انہوں نے موت کی سزا دی, دوسرا آن دا وے ہے, وغیرہ وغیرہ. ہواوے ان الزامات کو مسترد کرتی ہے اور کمپنی کہتی ہے کہ ان کی حیثیت آزاد ہے, حکومت چائنا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. واشنگٹن نے ڈونلڈ ٹرمپ آف کورس ویری اگریسو, انہوں نے ہواوے پر پابندیاں لگانے کی کوششوں میں پچھلے ماہ اضافہ کیا تھا. ٹرمپ انتظامیہ نے باقاعدہ ان پر پابندیاں لگائی تھیں. بہرحال دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے. میں نے آئی سی سی کی ایک نیوز کو, اب جو لوگ یہاں رہتے ہیں, میں آپ کو اتنا بتاتی ہوں کہ یہاں رہتے ہیں, اٹس اے بیوٹیفل سسٹم, مگر ہم اپنی حرکتوں کی وجہ سے بیک لیش بھی لیتے ہیں. مجھے ایک پولیٹیشین بہت بڑے, آئی ووڈ ناٹ نیم ہم, دیر واز اے ٹائم کہ وی ور ایکسپیکٹنگ کہ ہی ول بی دا نیکسٹ پرائم منسٹر. تو مجھے یاد ہے یہیں اسٹوڈیو میں ہی ہم تھے, اینڈ ہم اس کمرے میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے. ہی سیڈ ون تھنگ, میں آج تک مجھے وہ اس کی بات یاد آتی ہے. اس نے کہا واٹ از دی پرابلم ود دیز ساؤتھ ایشینز, اینڈ ہی واز لافنگ اینڈ ہی سیڈ یو نو واٹ, وین آئی اسٹینڈ ود ون گروپ, تو وہ کہتا ہے دیکھ تو اس گروپ کے پاس نہ جا کے کھڑا ہوئیں, دے آر ٹریٹرز, ان کی ایک برائی کر, دوسری برائی کر, تیسری. جب میں دوسرے گروپ کے پاس جاتا ہوں تو وہ کہتا ہے تو اس کے پاس کھڑا ہوا کیا کر رہا تھا, تجھے نہیں پتا وہ کتنی بدنام زمانہ لوگ ہیں. تو کہتا ہے کہ دس از مائی, وہ پولیٹیشین نے ہمیں بتایا کہ دس از مائی کامن ایکسپیرینس, کہ جب میں ایک گروپ کے, کمیونٹی پیپل آر سو ڈیوائڈیڈ, کہ جب ہم ایک گروپ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو دوسرا گروپ اس کی برائی کرتا ہے, جب دوسرے گروپ کے پاس جاتے ہیں تو پہلا گروپ اس کی برائی کرتا ہے. اٹس سیئر, اس سسٹم کی بات کر رہی ہوں. یہ جو آئی سی سی نے پابندی لگائی, آپ کو پتا ہے کل پاکستان جیت گیا اور انگلینڈ سے میچ تو جیت گیا, مگر پاکستان کو اس کی پاداش, اس کی سزا بڑی بری ملی ہے. سزا کیا ملی ہے کہ پاکستان کا اوور آل رن ریٹ جو تھا وہ کم تھا انگلینڈ کے خلاف ورلڈ کپ میں. آئی سی سی نے, انٹرنیشنل کرکٹ کلب نے سلو اوور ریٹ, یعنی انہوں نے اپنے اوور جو ہیں وہ سلو کروائے ہیں. پاکستان کے جو کپتان ہیں سرفراز احمد, ان سمیت قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں پر جرمانہ عائد کیا ہے. آئی سی سی کی جانب سے جاری ہونے والے اعلامیے کے مطابق قومی ٹیم کے کپتان پر سلو اوور ریٹ میچ فیس کا 20% جرمانہ عائد کیا گیا ہے, اور باقی کھلاڑی, یعنی باقی ٹیم کے کھلاڑی ان پر 10% کے لحاظ سے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے مقررہ وقت میں 50 اوور کروانے میں پاکستان ٹیم ایک اوور, یعنی on a given time they had to do 50 overs but they could do only 49 overs, تو سلو ریٹ ہو گیا. اب آگے آئیے, اب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم نے 50 اوورز کرانے تھے مقررہ وقت میں, بٹ دے کوڈ ڈو اونلی 49. ٹھیک ہے, وہیں عالمی کپ کی میزبان جو انگلش ٹیم تھی وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے زیادہ اوورز پیچھے ہونے کے باوجود کسی قسم کا جرمانہ تو دور, بلکہ تنبیہ بھی نہیں ان کو کی گئی. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کھیلے گئے میچ میں انگلینڈ کو دوپہر 2 بجے تک مقررہ, انگلینڈ نے بھی 2 بجے تک مقررہ اوورز, یعنی 50 اوورز مکمل کر لینے چاہیے تھے, لیکن اس وقت بھی 3 اوورز باقی تھے اور کم از کم مقررہ وقت سے 19 منٹ پیچھے تھے. 3 اوورز پیچھے تھے, پاکستان کی ٹیم ایک اوور پیچھے تھی, تو 20% فائن کپتان کو, 10% باقی کھلاڑیوں کو ہوا. ویئر ایز انگلینڈ کی ٹیم جو تھی وہ مقررہ ٹائم پہ اپنے اوورز ختم کرنے میں تقریباً 3 اوورز پیچھے تھی, 19 منٹ پیچھے تھی, بٹ دے آر ناٹ فائن. اور کہتے ہیں کہ جب انگلش ٹیم نے اپنے اوورز مکمل کی اور پاکستان کی بیٹنگ ختم ہوئی تو میزبان ٹیم کم از کم 3 اوورز پیچھے تھے, اور انگلش کپتان ان کی ٹیم سلو اوور ریٹ کے خلاف ورزی کے سنگین دائرے میں آ چکے تھے, مگر ان کو نہیں فائن ہوا. نو, दे वर नॉट फाइन, वेयर एज पाकिस्तान की टीम एक ओवर पीछे थी, उसको फाइन हो गया। अब वो कहते हैं कि पहले दर्जे में अगर वन डे मैच में कोई टीम मुकर्रर वक्त से एक या दो ओवर पीछे हो तो ये मामूली जुर्म तसव्वुर होता है, ऐसी सूरत में कप्तान और टीम पर जुर्माना या फिर उन्हें तंबीह की जाती है। अच्छा, अगर आइंदा 12 महीने में दोबारा पाकिस्तान की टीम ये करती है तो कप्तान पर एक मैच की पाबंदी लग जाती है, और यही वजह थी कि पाकिस्तान के खिलाफ वन डे सीरीज़ में इंग्लिश कप्तान जो आइन मॉर्गन थे उन पर एक मैच की पाबंदी भी लगी थी। और दूसरे दर्जे के तहत अगर कोई टीम मुकर्रर वक्त में तीन या इससे ज़्यादा ओवर पीछे हो, जैसे अभी इंग्लैंड की टीम ऑलमोस्ट 3 ओवर्स पीछे थी, तो उसे संगीन खिलाफ वर्जी तसव्वुर किया जाता है। मजकूरा टीम पर जुर्माने के साथ कप्तान पर दो मैच की पाबंदी भी आयद की जाती थी। अब हालांकि इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच था उसमें मुकर्रर वक्त में कम अज़ कम 3 ओवर्स पीछे थी, लेकिन इंग्लैंड के कप्तान पर कोई जुर्माना नहीं किया गया, वेरस पाकिस्तान का जो कैप्टन है उसके ऊपर पाबंदी लगी है। एक कॉल को लूंगी और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी
जी वालेकुम सलाम
जनाब।
पाकिस्तान की टीम के बारे में आप जो विचार फरमा रही हैं, देखिए जब पाकिस्तान के 3 प्लेयर इंग्लैंड में गए थे, स्पॉट फिक्सिंग का उन्होंने किया, हर पाकिस्तानी अपने अपने दिल पर हाथ रख कर एक जो है ना पूछे अपने आप से, इंडिया में IPL में टोटल गैम्बलिंग होती है, लेकिन वो अपने प्लेयर को प्लेयर के साथ खड़े होते हैं, उनकी बुराइयां छुपाते हैं, उन्होंने उन्होंने पता है कि इन्होंने किया है, लेकिन वही आज वो वर्ल्ड कप में भी एक शिरकत कर रहे हैं, वो वर्ल्ड कप का हिस्सा भी है। वो अब लास्ट टाइम बेचारा वो शर्जील है जो ओपनर आता था, मोहम्मद इरफान, उनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन उन दोनों को एक साइड पे कर दिया। इतनी मेहनत करके जब देखे प्लेयर आते हैं तो अगर पाकिस्तान की वो जो वो करते धरते हैं वो उनके साथ नहीं खड़े होंगे, बहुत बड़ी ज्यादती है उनके साथ। मेरा सिर्फ कहने का यही मकसद है कि अब इंग्लैंड अपना हुक्म वहां पे वो जारी करेगा, क्योंकि उसने अपना वो तो हार गया है और इन्होंने अच्छा खेले हैं, तो कल एक जो है ना वो ऐसा करते हैं कि इस तरह का प्रेशर एक रख दो इनके ऊपर कि भाई एक जो है ना संभल के एक खेलना, जो अगर कोई ऐसी फिर वो तुमने जो है ना हुआ तो एक 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 या दो को के पकड़ के वो ऐसा घसीटेंगे तो वो बेचारे बेबस हो जाएंगे। तो बोर्ड भी हमारा एक जो है ना वो आगे आपको पता है उन्होंने अगर वो नहीं है वो भी बेबस है, तो इस तरह इंडिया का जो है ना वो बेबस नहीं है, इंडिया के प्लेयर जो कुछ मर्जी करते रहे। मैं अंदरूनी आपको बता रहा हूँ कि ये IPL एक टोटल एक गैम्बलिंग होती है, और PSL में एक जो है ना देख ले सारा कुछ क्लीन एंड वो सारा कुछ साफ साफ है, लेकिन उनको मौका चाहिए। अब ये कि संभलने की हमें जरूरत है।
आपने बड़ी सही बात की। देखिए सलमान भाई, अगर हम ऑनेस्टली देखें ना तो ये जो गेम्स के ऊपर गैम्बलिंग, इट्स इंटरनेशनली पूरी दुनिया में ये गैम्बलिंग होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्लेयर्स, इवन कनाडा में भी जो मैचेस हो रहे हैं बाकायदा इन मैचेस पे भी पैसा लगता है लोगों का, वो एक अलग बात है, मगर टीम स्पिरिट कौन
की मैं आपको बता, लेकिन शिकार जो है ना वो पाकिस्तान के प्लेयर होते हैं। शिकार बेचारा एक वो जनेद था लड़का, लेफ्ट हैंडर, अच्छा खेलता था, जो भी है वो आया। देखिए वो ये है कि जो है सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयरों में एक जो ना हुआ है।
बहुत शुक्रिया। आज जो
कर देना कि जो इन्हें खेलने के काबिल ही ना रहे।
आज जो काम हुआ है ना, ये जो स्लो ओवर रेट पे फाइन हुआ है, पाकिस्तान की टीम एक ओवर पीछे थी वेयर एज इंग्लैंड की टीम 3 ओवर्स ऑलमोस्ट पीछे थी, उनको नहीं फाइन हुआ। अब लेट्स सी कि हाउ इट वर्क्स। थैंक यू वेरी मच सलमान भाई, थैंक यू। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान में अगर अब कोई एक सख्त होता है तो होना चाहिए। मैं बेशतर इसके कि मैं अगली कॉल को लूँ। अब पता है कि मैं चाइना का हमने पहले भी जिक्र किया है, जो तैनामन स्क्वायर के बारे में, ये वो जगह थी जहाँ लोग प्रोटेस्ट करने के लिए यंग बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, इकट्ठे हुए थे, और फिर आर्मी के ट्रक्स आए थे और आर्मी के ट्रक्स ने और टैंक्स आए थे, इन्होंने बिल्कुल खोल दिए थे तोपों के मुंह, खोल तोपें चला दी थी, लोगों को इतना मार दिया था। अमेरिका इसको बड़ा ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट कर रहा है। इन लोगों का ख्याल है कि मोर देन 10,000 पीपल वर किल्ड। आज चाइना ने उस पर स्टैंड ले लिया, उन्होंने पहली दफ़ा پہلی دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہوا تھا بالکل صحیح ہوا تھا, فوجیوں نے جو چڑھائی کی تھی بالکل صحیح کی تھی. تین دہائیوں کے بعد, تین صدیوں کے بعد, تین دہائیوں کے بعد, یعنی 30 سال کے بعد انہوں نے فوجی کارروائی کا چائنا نے دفاع کیا اور انہوں نے شہریوں کے خلاف 3 اور 4 جون کو, 1989 میں یہ ہوا تھا, 3rd and 7th of June, اینڈ آفٹر 30 ایئرز, آلموسٹ 30 ایئرز لیٹر, چائنا کے وزیر دفاع انہوں نے سنگاپور میں ایک علاقائی کانفرنس کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیکورٹی فورسز نے تینمن اسکوئر میں سخت کارروائی کی تھی جو بالکل صحیح تھی, بالکل صحیح تھی. یہ چائنیز اسٹوڈنٹ تھے اور مزدور تھے, انہوں نے بیجنگ کے تینمن اسکوئر میں جمہوری حقوق کے حصول کے لیے بہت بڑا اجتماع منعقد کیا تھا. کمیونسٹ حکام نے اس اجتماع کو ظالمانہ انداز سے کچل کے رکھ دیا تھا اور اس میں سینکڑوں لوگ مارے گئے تھے. امریکہ آج بھی یہ کہتا ہے کہ 10,000 سے زیادہ لوگ مرے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہوا تھا صحیح ہوا تھا. اس منگل کو بھی تینمن اسکوئر میں 3 اور 4 جون کو قتل عام کے واقعے کو 30 برس, یہ 3rd and 4th کو ہوا تھا, ٹو ڈیز 6 آپ سمجھ لیجیے 2 days ago کی بات ہے, یعنی 30 سال اور 2 دن پہلے کی بات ہے. ایک کال اور اس کے بعد پھر میں اس نیوز کو آگے تک لے کے چلوں گی. جی السلام علیکم. جی
جی وعلیکم السلام, وقار خان بات کر رہا ہوں, کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں؟
اللہ کا بہت شکر ہے وقار خان.
میں صرف ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہ رہا ہوں, ہمارے جتنے بھی کالر دوست آتے ہیں یہ ہر ٹاپک تو بولیں گے, ہر ٹاپک پہ انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, چاہے وہ سیاست ہو, چاہے وہ آپ کا کیا نام ہے اسپورٹس ہو, چاہے وہ آپ کا معاشی حالات ہو, مگر اپنی اوپینین وہ لوگ ایسے دیتے ہیں. چلے ٹھیک ہے, اوپینین سارا سب کو لینا چاہیے, لیکن بات ایسی ہے کہ مگر آپ اس طرح بولیں کہ دوسرا بھی آگے کوئی کھیل رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے. ٹیم جو ہے وہ ہارتی بھی ہے, ٹیم جو ہے وہ جیتی بھی ہے. ہر ٹیم کے آگے اپنے اپنے پسندیدہ اور کہنا چاہیے کہ اسٹرانگ پلیئرز ہوتے ہیں, ویک پلیئرز ہوتے ہیں. اب کھیل یہ تو ہار جیت تو کھیل کا اس سے ہے, مطلب آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں مطلب اپنے اوپینین کو اس طرح کرنا کہ ہم ہی سب کچھ جانتے ہیں, بس یہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے. بس اتنا ہی کہنا تھا مجھے.
بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. کتنا اچھا ہو, بہت شکریہ چندا بھائی, اٹ واز اے ویری نائس کال. کتنا اچھا ہو کہ منظر بھائی آپ مجھے اسٹوڈیو میں کال کریں. آئی امیجیٹلی ٹیک یور کال. منظر صاحب سے میں بات کروں گی, ونڈرفل جرنلسٹ ہیئر ان کینیڈا. میں تینمن اسکوئر کی بات کرنا چاہتی ہوں. یہ 1989 میں یہ واقعہ ہوا تھا. چلیے جی منظر بھائی میرے ساتھ آگے. منظر بھائی السلام علیکم.
نہیں جی میں منظر نہیں ہوں.
جی جی جعفری صاحب
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
گل تھی کر رہے سو گیمبلنگ بھی بالکل ہے, ٹاٹو چ امریکہ یورپ چ جنیا بھی سپورٹس نے نا سب چی گیمبلنگ ہے. ٹھیک ہے, تسی دیکھنا تسی کتنی گیمہ جیتے نے باسکٹ بال دی دو ہے جی
جی جی
ایک کرے نے نا اگلا میچ پھر وہ جتن گیا امریکہ والے دیکھ لیں
بہت بہت بڑی پیاری تھی گل کی. میں بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ گیمبلنگ پوری دنیا میں ہے. دیر آر پیپل ہو آر دا گیمبلرز, دیر آر پیپل, اینڈ اس کو آپ روک نہیں سکتے. پیسہ دنیا کی ہر گیم کے اوپر لگتا ہے, مگر اور باقی یہ کہ ہر انسان اپنے تئیں جو بھی کہتا ہے صحیح کہتا ہے. جعفر صاحب آپ کو بہت شکریہ.
یہ بہت بڑا مافیا ہے, کوئی چھوٹا کام نہیں ہے.
بہت
جو 13 ملین خریدے پلیئر اور انہوں نے کون خریدا ہے کد واسطے انہوں نے ریٹ اتنے نے, وہ کوئی ضروری انہوں کی گیم نہیں, گیم پاوے اتنے اچھے نہ بھی ہوئے لیکن انہوں نے ریٹ بدتے ہیں انہوں گیما پھر انہوں نے ریٹ کیوں بدتے ہیں دعا منگنے کہ پاکستان چلو بارش ہو بھی جائے پاکستان بھی اچھا کھیلے دل لا کے اگر کھیلے جڑے بھی نے نا اپنا کہن جی اتنے آئی سی سی دے کی آدھے جی انہوں نے بڑے تلقات یہ وہ کوئی گل نہیں اللہ دیکھ رہا ہے
اللہ تعالیٰ جنو عزت دے گا اللہ ہونا چاہیے بس بہت شکریہ میں منظر بھائی Manzar bhai, oh, I'm so sorry. Man, alaikum Manzar bhai. I look forward for your call. China ka main baat kar rahi hoon aur mera khayal hai Pakistan ko bhi iski zarurat hai. Definitely Manzar bhai aa gaye to mera khayal hai main unse hi baat kara lun to zyada behtar hoga. Manzar bhai, assalam alaikum.
وعلیکم السلام.
آج آپ نے دیکھا ہے کہ 30 سال 2 دن کے بعد چائنا کے جو وزیر دفاع ہے انہوں نے تینمن سکیور پہ جو آرمی کی یلغار تھی انہوں نے کہا ہے واٹ ایور ہیپن واز ایبسلیوٹلی رائٹ فار دی ملک کی بہتری کے لیے تھا. اور آج آپ نے آسٹریلیا کے بارے میں بھی سن لیا ہے کہ منظر بھائی یو آر اے جرنلسٹ ایز ویل بٹ آئی نو یو ول ناٹ ایگری ود اٹ. آج اگر وہاں پہ بھی پولیس نے ریٹ کیا ہے تو ملکوں کی سلامتی کے لیے اگر ڈاکیومنٹس لیک ہوتے ہیں تو وہ مناسب نہیں ہے. مگر آج انٹرنیشنلی جو جرنلسٹ میڈیا ہے اس کی کہ آسٹریلین براڈ کاسٹنگ کمپنی کے اوپر جو پولیس نے ریٹ کیا ہے ان کے کمپیوٹرز کو چیک کیا ہے ان کی وہ کیا ہے تو اس کو بڑا نگے کیا جا رہا ہے. آپ بتائیے کیا شیئر کریں گے؟
دیکھیں آپا جی, سب سے بڑی ملک کی سلامتی ہے اور ملک کے قومی راز جو ہوتے ہیں اور ملک کی جو اہم چیزوں کی انفارمیشن ہوتی ہیں وہ کوئی بھی جرنلسٹ ہو, کسی بھی ملک کا جرنلسٹ ہو, میں نہیں سمجھتا کہ اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کہیں شیئر کرے یا کسی کو آگے پاس آن کرے. اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ ابھی ہمارے پاکستان میں تھوڑے دن پہلے ہی اس سلسلے میں ہمارے سب سے بڑے اہم ادارے نے اپنے لوگوں کے ساتھ کس قسم کی خود احتسابی کیا اور ان کو سزائیں دی ہیں. تو جو بھی یہ کرے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سزا کا حقدار ہے, چاہے وہ جرنلسٹ ہو چاہے کوئی ایک عام آدمی ہو. ملک کی سلامتی ہر ایک کے لیے, آپ حلف کس لیے اٹھاتے ہیں؟ ملک کی وفاداری کا حلف اٹھاتے ہوں کہ ہم ملک کی سلامتی کے لیے حلف اٹھا رہے ہیں, اس ملک کی حفاظت کے لیے ہم حلف اٹھا رہے ہیں, اور چلے جائے کہ ہم اس کے راز یا اس کی چیزوں کا افشا کریں؟
نہیں کرنے چاہیے نا. ابھی جو میں ابھی آپ نے بالکل یہ آج یہ یہاں سے یہ آسٹریلیا کا واقعہ بھی ہو گیا. امریکہ کے رولز اینڈ ریگولیشنز میں بھی آپ جو اسٹیٹ ڈاکیومنٹس ہیں اگر دیر آر فیو تھنگ جن کو 25 ایئرز تک سیز کر دیا جاتا ہے وہ سیز رہتے ہیں, آپ چاہیں تو ان کو آگے 25 سال اور ایکسٹینشن لیتے ہیں. آپ میرے ساتھ رہیے گی. تنمن اسکیئر کے بارے جو میں بات کر رہی ہوں اس میں کہتے ہیں کہ 1989 میں 3-4 جون کو تقریباً 10 لوگ چائنیز اکٹھے ہوئے تھے اور 1989 میں انہوں نے بلکہ تینمن اسکوئر پہ قبضہ کر لیا تھا. اور یہ چائنا کی تاریخ میں کمیونسٹ پارٹی کے خلاف سب سے بڑا مظاہرہ سمجھا جاتا ہے. ہوا یہ تھا کہ تینمن اسکوئر پہ تو 10,000 لوگ اکٹھے ہو گئے تھے, اس کے بعد یہ تحریک باہر کی آؤٹ ورڈ گرو کر گئی اور چائنا کے دوسرے شہروں اور یونیورسٹیز میں بھی یہی لوگ اس طرح سے اکٹھا ہونا شروع ہو گئے تھے. اب مظاہرین جمہوری حقوق اور شہری آزادی کے مطالبات کے علاوہ آمریت کے خلاف جو تھے وہ مطالبات کر رہے تھے. مہنگائی میں اضافہ, تنخواہوں کی کمی, رہائش کے مسائل پر شکایت کر رہے تھے. ہوا کیا کہ 3 جون کو جو چائنا کے فوجی ٹینک ہے وہ حرکت میں آئے, انہوں نے فوجی دستوں نے فائرنگ شروع کی جس میں تینمن اسکوئر میں کئی لوگ ہلاک ہوئے, متعدد زخمی ہوئے. اگین امریکہ آج بھی کہتا ہے کہ دس تعداد واز مور دین 10,000, مگر اس دفعہ دس از دا فرسٹ ٹائم چائنا نے کہا ہے ہم نے جو کیا تھا ہم نے بالکل صحیح کیا تھا.
وہ دیکھے نا, وہ اپنے ملک کی مفاد کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان دا انٹرسٹ آف نیشن, ہم نے اپنے ملک کی دفاع کے لیے, اپنے ملک کو بچانے کے لیے, اپنے عوام کے, چاہے وہ غلط ہو چاہے صحیح ہو, لیکن ان کا موقف یہ ہے کہ جی ہم نے اپنے ملک کی سلامتی کے لیے. سیم چیز اگر آپ لے لیں کہ ایران کے اندر جب انقلاب ایران آیا تو اس میں انہوں نے کس طریقے سے لوگوں کو ایک زمانے میں ہینگ بھی کیا, سزائیں موت بھی دی, ان کا کیا ریزن تھا؟ انہوں نے بھی یہ کہا کہ ان دا انٹرسٹ آف نیشن, ہم نے اپنے ملک کی بقا کے لیے اپنے ایجنٹوں کا صفائی کیا. تو یہ چیز اس طرف بھی سامنے آئی ہے. اب وہ امریکہ کیونکہ ایکسپلائٹ کرتا ہے اس چیز کو, وہی چیز اگر امریکہ میں ہو تو وہ انسانی حقوق کے خلاف نہیں جاتی, لیکن اگر پوری دوسری دنیا میں ہو رہی ہے تو وہ اس کو ایکسپلائٹ کرنا, وہ اپنے آپ کو سیاسی طور پہ کیش کرانے کی پوزیشن لیتے چاہتا ہے.
सही सही सही, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा आज मैं एक क्विकली आपसे जो और बात करना चाहती हूँ, दुनिया में फहाशी का बढ़ना, यानी वो कहते हैं कि ये जो इस वक्त इंटरनेट है बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ये जितनी वेबसाइट जहाँ पे लोग फोहश मवाद को देखते हैं वो उनकी रेटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप नॉर्मल साइट्स की तरफ चले जाएँ ना तो वो कहते हैं कि लिंक्डइन और नेटफ्लिक्स इनका नंबर 28वां है, अगर वेबसाइट्स की मकबूल तरीन वेबसाइट्स में इनका नंबर 28वां है, लिंक्डइन का भी और नेटफ्लिक्स का भी। बेशुमार लोग फिल्में देखते हैं नेटफ्लिक्स पे जाके लिंक्डइन पे, मगर जितनी ये नेकेड साइट्स हैं ये फोश साइट्स हैं उनकी रेटिंग इससे कई गुना ज्यादा है, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे आती है।
जब आप किसी चीज को खेल तसव्वुर कर लें या ये तसव्वुर कर लें कि जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, एक छोटा सा लफ्ज है ना कि एंजॉयमेंट,
बिल्कुल
जिस तरीके से ये पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है, सिर्फ एक जगह नहीं, और इसके जो जो लोग उसके देखने वाले हैं वो हर एज के हो गए, क्योंकि इस सेल फोन के जरिए इस इंटरनेट के जरिए आपने इसका एक्सेस इतना इजी कर दिया है कि एक आम आदमी, एक छोटा उम्र का बच्चा भी और एक बड़ा, और प्राइवेसी में कोई नहीं है। पहले एक जमाने में अगर आप इसको वीसीआर के जरिए कोई देखता तो मेरे ख्याल से उसके लिए कोई खास वो करना होता था, अब तो हर एक के हाथ में सेलफोन है और हर एक के हाथ में इंटरनेट है। एक्सेस इतना इजी हो गया है जो आपके, और यही वजह है कि आप जहनी तौर पे इतने कमजोर होते जा रहे हैं कि जिसके नतीजे में वो जो आपने यही टोरंटो के दो वाकयात सुनाए कि जनाब वो साहब खवातीन से गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीजें उसी चीजों का एक असर है। नफसियाती कमजोरियां लोगों की और उसको एक्सप्लाइटेशन उसका, जब तक इसके लिए कोई, जिस तरीके से बच्चों की वीडियोस के ऊपर नॉर्थ अमेरिका के अंदर सख्तियां हैं, तो इसी तरीके से मैं समझता हूँ और सख्तियां होनी चाहिए ताकि इस पे कुछ ना कुछ प्रेशर जरूर होना चाहिए। और खासकर हमारे मुल्कों में देखें, हमारे वो ममालिक जहाँ पे तालीम की जरूरत है वहां इसका नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है, उसी इंटरनेट को जिससे हम दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं, दुनिया को देख सकते हैं, तालीम हासिल कर सकते हैं, हम उसको मिसयूज, हमारा ये हो रहा है कि हम इन साइट्सों की भरमार है और ये साइट जो बना रहे हैं और वो एक से एक तरीका, नए से नया तरीका इजाद कर रहे हैं।
ये बड़े दुख की बात है और ये इंसान का अलमिया रहा है। कहते हैं कि 1990 की दहाई में एक तहकीक से अंदाजा हुआ कि हर 6 में से जो 5 तस्वीरें थी ना वो पोर्न पिक्चर थी, नंगी तस्वीरें थी, और इंटरनेट चैट रूम्स बना दिए गए। कहते हैं कि ये जो बैड साइट्स देखने की ख्वाहिश ने इंटरनेट के तेज और बेहतर कनेक्शन, बेहतर बैंडविड्थ को मुमकिन बनाने में मदद दी, और इसी यानी ये बुराई को फैलाते फैलाते इंटरनेट जो है ना उसने अपनी स्पीड को भी तेज किया। और इट्स सैड, मुझे लगता है 21वीं सदी में इंसान बिल्कुल हैवान बन के रह गया।
बिल्कुल, वो दूसरा मतलब जानवरों से बदतर मैं समझता हूँ,
जानवरों से बदतर। शहबाज शरीफ पाकिस्तान में आ रहे हैं और परसों की डेट है, टुडे 6, 7 और 8 को कहा जाता है वो पहुंचेंगे, मैं आपकी राय लेना चाहती हूँ।
देखिए मैंने शायद पहले भी कहीं कहा था कि वो वापस आएंगे, उन्हें वापस आना है क्योंकि उनकी सियासत अभी बाकी है, उनकी सियासत अभी खत्म नहीं हुई है, चाहे वो उनके बड़े भाई के हवाले से हो, चाहे उनकी फैमिली के हवाले से हो, क्योंकि वो नाम अभी भी, वो खानदान अभी भी लोगों के पास जो है ना वो सर्कुलेट हो रहा है, चाहे वो सिर्फ पंजाब में हो या पंजाब से बाहर निकल के हो, तो इतनी आसानी से वो यूँ नहीं समझते कि वो जो भी उन्होंने क्रेडिट अपनी हलका बनाया है उसको मार्केट में छोड़ के किसी दूसरे के लिए, खासकर पीटीआई या पीपल्स पार्टी के लिए मैदान छोड़ के चले जाए। और उन्हें मालूम है कि जितना अगर वो 1-2 साल उनको जेल या इस किस्म की हुई तो उन्हें, वो कहते ना उम्मीद बहा उस पे आप उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो उन्हें वो अंदाजा है कि ये वक्त गुजरेगा तो उनको, उनके पास ओपन चांस मिलेगा, ग्राउंड उनको मिलेगा, और वो सब इंतजार कर रहे हैं कि पीटीआई की कमजोरियां हों या पीटीआई की नाकामियां हों तो उनके लिए ग्राउंड वापसी में आप देखें तीन पार्टियां इस वक्त पाकिस्तान में सर्कुलेट कर रहे हैं और अगर पीटीआई अपना टर्नओवर पूरा करती है कामयाबी में या नाकामयाबी में तो उसके बाद चांस किसके पास है, चौथा ऑप्शन तो आपके पास तो नहीं है पाकिस्तान में। तो मैं नहीं समझता कि वो वहां बाहर बैठ के अपने आप को आउट रखेंगे और फिर दूसरों के लिए मैदान खाली करेंगे। उन्हें आना है और वो आएंगे और वो अपने तौर पे जो भी उनका रोल है जो वो समझते हैं आई थिंक वो प्ले करेंगे, अपोजिशन में बैठ के करें, अपोजिशन बाकी दूसरों के साथ मिला के करें। बहरहाल उनका अभी उनकी सियासत बाकी है पाकिस्तान में, उनकी सियासत अभी खत्म नहीं हुई।
बहुत शुक्रिया मेरे बहुत प्यारे भाई।
मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता था आपके प्रोग्राम में एक
बार। मुझे बिल्कुल, मैं आपसे पूछने जा रही थी, मुझे मेरा बुढ़ापा भूल गया आर्मी के बजट के बारे में।
तो वो हमारे सावर नहीं आशमी साहब भी बातों को बाज दफा थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती है। फौज ने कहीं भी बजट लेने से मना नहीं किया है, फौज ने कहा है कि इजाफी बजट हम नहीं लेंगे। जिस तरीके हर साल उनके बजट में इजाफा होता है, उनके फंड्स में इजाफा होता है, तो उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल जो भी उनको फंड्स मिले थे जितने भी थे वो ही लेंगे, ना कि उससे अगर आप उनको 10% या 20% ज्यादा दे रहे हैं तो उन्होंने कहा हमें इजाफी बजट की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने पुराने बजट में ही अपने आप को एडजस्ट करेंगे और उसको हम अपने खर्चों से इजाफी खर्चों से कमी करके अपने बड़े अफसरान की फौजी अफसरान की तनख्वाहें ना बढ़ा के उसको सेविंग करेंगे। लेकिन उनका अपना फौज का अपना कोई फंड नहीं होता कि वो कहें कि हमारे पास रखे हुए पैसे हैं हम उनको इस्तेमाल कर लेंगे, हर साल बजट में उनके फंड एलोकेट होते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम इस दफा मुल्क की सूरत हाल के पेश नजर बहुत बड़ा इकदाम है, हम इजाफी फंड नहीं लेंगे, हम जो भी मिलता है उसी के अंदर गुजारा करें।
मंजर भाई आपने बात बड़ी अच्छी की और मुझे मगर ये भी हौसला अफजा बात है। देखिए जी आखिर फौज ने अपने अखराजात तो पूरे करने हैं ना, तो एक बजट का एक हिस्सा तो उनको एलोकेट होता है, तो उन्होंने अगर उसमें इजाफा, हालांकि मुल्क में महंगाई का रोना रोया जा रहा है और बहुत सी चीजों का, तो उन्होंने कहा कि हम इस बजट में इजाफा नहीं करेंगे, वॉट एवर पिछले साल का जो बजट था उसी के मुताबिक हम लेंगे,
उसी के अंदर अपने को करेंगे और उसके अंदर भी हम अपने आप को देखें। हमारे यहाँ बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके जरिए हम अपने फंड जनरेट कर सकते हैं। अभी आपकी बातों में जब दोपहर बात हो रही थी तो उसमें 9 दिन की छुट्टियों की बात हो रही थी। एक जमाने में कहा जाता था कि जब कराची में हड़ताल होती है तो 5 से 7 अरब रुपए रोज का नुकसान होता है,
क्योंकि दुकानें बंद होती हैं, कारोबार बंद होता है,
आपका पोर्ट बंद होती है ना,
या
आपकी पोर्ट बंद हो जाती है, आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो जाती है, पूरी दुनिया से आपका रास्ता बिजनेस के तौर पे बंद हो जाता है।
और वैसे भी हम मार खाते हैं क्योंकि मुझे याद है देयर वाज अ टाइम कि हमारा फ्राइडे की छुट्टी होनी शुरू हो गई थी, सैटरडे से इंटरनेशनल मार्केट की छुट्टी हो जाती है तो हम 3 दिन बाहर निकल जाते हैं।
आप 9 दिन बंद कर लेते हैं तो 5 अरब रुपए रोज से भी कितना खर्चा नुकसान हो गया आपका। हम सब बात ये करते हैं कि हमने बहुत सब कुछ करना है, लेकिन जब करने का वक्त आता है तो अभी हुकूमत अगर ये 3 दिन की जगह 2 दिन की छुट्टियां करते तो ईडी इमरान हमारे वजीर आजम को सब बुरा कहने लगते
हैं। बस यही हम किसी तौर पे खुश नहीं
है खुश। हम सब यहाँ बैठ के भी हम बहुत कह रहे हैं कि वहाँ सब कुछ अच्छा हो रहा है, वहाँ वालों से पूछेंगे वहाँ क्या अच्छा हो रहा है और उन लोगों से कहें कि भाई करना उन सब नहीं है और हम सब नहीं। उस मुल्क के लिए अगर करेगा कोई और नहीं करेगा, बाहर से कोई आगे नहीं करेगा।
बहुत
हर आदमी को टैक्स सिस्टम में यहाँ हम कनाडा में नहीं करते क्या, चाहे आपने जॉब की हो या न की हो, जीरो का टैक्स तो देना है ना, आपने फाइल तो करना है ना,
फाइल तो करना, वहाँ तो कोई फाइल ही नहीं करता, तो
कोई नहीं पूछता ना 1 लाख कमा रहे हैं या 200 रुपए कमा रहे हैं, आपने जीरो का टैक्स फाइल करना है कि मेरी कोई इनकम नहीं थी, एक कागज पे डॉक्यूमेंट्स में जा रहा है। और मसला ये है कि उस हमारे मुल्क में जो छुपी हुई चीज है ना उनको लाने की जरूरत यही नहीं पता कि हमारी आबादी कितनी, हमें अभी तक यही नहीं पता कि ये शख्स जो बराबर में रह रहा है क्या ये पाकिस्तानी या 14 साल से ऐसे ही रह रहा है। अब इस काबीना में आप देखेंगे बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो अफगानिस्तान की जंग में पाकिस्तान में आए थे और उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होके आपकी असेंबलियों में बैठे हुए,
और
आपके सामने वो दो तीन आदमियों का नाम है सामने कि वो कह रहे हैं हम फलाए हैं हम फलाए.
वजीर अली का क्या बना, अली वजीर को छोड़ दिया कि नहीं छोड़ा अभी?
नहीं, उनका छोड़ा तो नहीं, उनका रिमांड को उन्होंने कहा था कि हम मजीद रिमांड नहीं देंगे, उसके बाद की कोई उसकी
सूरत हाल नहीं आई.
हाँ, सामने नहीं आई है उसको. अच्छा, जब इससे पहले आप देखें 15-20 दिन पहले ISPR ने वादे कर दिया था कि इन लोगों के साथ डॉक्यूमेंटेशन वाइज प्रूफ हो चुका है कि ये लोग क्या कर रहे हैं. हुकूमत को कोई एक्शन, हुकूमत की तरफ से कोई एक्शन नहीं आया. उस वक्त ये कहा जा रहा था हुकूमत के तमाम जितने लोग बैठे हुए थे कि जी हमारे जो बच्चे हैं इनको हमने समझाना है, इनमें सब लोग बुरे नहीं है, अच्छे भी हैं, हमने अच्छों को अपनी तरफ लाना है, बुरों को वो करना है. तो एक्शन तो हम ले, हम तो हर कमजोरी दिखा रहे हैं ना. हुकूमत को भी अपनी रियासत को, अपनी गिरफ्त को ताकतवर रखना है, उसको दिखाना है कि हुकूमत ताकतवर है. हमें हर तरफ से सोचना पड़ेगा. हमें मसला ये है कि जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी, शुरू के 3 महीने हमें बहुत सख्त फैसले करने की जरूरत थी, क्योंकि वो वक्त था कि टेम्पो अवाम का बुलंद था, हर एक कुछ ना कुछ करने की चाह के अंदर था, उन्हीं उसी चाह के अंदर बड़े फैसले हुआ करते. जब वक्त गुजर जाता है फिर फैसले, बड़े फैसले नहीं हो सकते. जब कूप होता है, जब भी कहीं फौजी इनकलाब होता है, तो उस दौरान जो आगे पीछे लोग हो जाते हैं उसको सब लोग भूल चुके होते हैं. आपने बांग्लादेश में देखा, कूप हुआ, मुजीबुर रहमान उनका सबसे बड़ा लीडर था, लेकिन कूप में उन्होंने सबको फारिग कर दिया और उसके बाद लोग बैठे हुए, लोग 2-4-5-10-15 दिन के बाद सेटल डाउन हो गए. हमें जरूरत है इनकलाब की, लोगों के इनकलाब की, अपने अंदर के इनकलाब.
सबसे खूबसूरत आज का हाइलाइटेड बात कि हमें जरूरत है अपने अंदर इनकलाब की.
मैं आपसे ही कहता हूँ,
बहुत
हमें अपने अंदर के इनकलाब की जरूरत है. हर आदमी देखे, कराची के अंदर करोड़ों ठेले होंगे, करोड़ों, 1 करोड़ से ज्यादा तो होंगे बिल्कुल किसी उसके. 50 रुपए वो सुबह वाले को देते हैं पुलिस वाले को, और 50 रुपए शाम को पुलिस वाले को देते हैं. 100 रुपए रोज वो सड़क पे खड़े होने को देते हैं पुलिस वाले, महीने के ऊपर 3,000 रुपए.
सही.
अगर उनसे ये कहें कि आपकी ठेले के ऊपर एक स्टिकर लग जाएगा और आप रजिस्टर्ड बिजनेस हो जाएगा आपका, आप 2,000 रुपए हुकूमत को दे दो, कराची बंद कर देंगे 2 महीने के लिए, लेकिन 2,000 रुपए हुकूमत को नहीं देंगे, 3,000 रुपए महीना उनको दे देते हैं.
सही. अच्छा चलिए मंजर भाई, मैं आज यहाँ इस टॉपिक को ख़त्म कर दूँ, कल हम इसी जगह से स्टार्ट करेंगे. और आज मैं एक थॉट आपको देने जा रही हूँ. आप कनाडा में हैं और यहाँ का वेलफेयर सिस्टम इतना क्लासिक वेलफेयर सिस्टम है, यानी इफ़ यू हैव किड्स आपको चाइल्ड बेनिफिट मिलता है, आपका एक बच्चा है, दो बच्चा है. आज मैं मिसिसागा में से गुजर रही थी तो एक खातून ने एक बैनर पकड़ा हुआ था बर्न एंड थोर्प हाईवे 10 के ऊपर, और बैगिंग के बीच में आपको पता है कि अगर जे वॉक करते हुए किसी की मौत हो जाए तो इंश्योरेंस उसको कवर नहीं करती. शी वॉज जे वॉकिंग कि जब ट्रैफिक पे लाइट खड़ी हुई थी तो इन बिटवीन गाड़ियों में से, बैगर्स बहुत सारे हर कॉर्नर पे आपको मिलते हैं, बट दे स्टे ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे या एक्सट्रीम राइट के ऊपर स्टे करते हैं. ये औरत अपनी इंतहा को गुजरते हुए 4 लेन्स थी, दरमियान वाली लेन्स में भी अपना बोर्ड लेके आ रही थी. शी कुड बी हर्ट इन अ वेरी ईजी वे. और उसने लिखा हुआ था कि आई एम मदर ऑफ 4 किड्स. जो ये क्या होता है, फैमिली विक्टम होता है, डोमेस्टिक वायलेंस की मैं विक्टम हूँ और आई नीड मनी. और मुझे ख्याल आया था कि 4 बच्चों की अगर वो माँ है तो डेफिनेटली उसका तो चाइल्ड टैक्स ही उसका तकरीबन ठीक ठाक बनता है, देन शी इज़ अ सिंगल मदर, शी गेट बेनिफिट ऑन दैट. मेरा ख्याल है कि अगर, और हम मुसलमान जो है ना हर जगह पे अपनी वो जज्बातियत और इस्लामियत को साथ में ला के बेड़ा गर्क कर देते हैं कि भाई उसने, मैं खुद भी इस चीज़ की कायल हूँ कि किसी ने हाथ फैलाया तो दे दें, मगर हम आहिस्ता आहिस्ता बैगर्स की तादाद सड़क पे बढ़ाते चले जाएंगे. जब बैगर्स की तादाद बढ़ेगी तो चोरियाँ बढ़ेंगी, जब बैगर्स की तादाद बढ़ेगी तो प्रॉस्टिट्यूशन बढ़ेगी, जब बैगर्स की तादाद बढ़ेगी तो ड्रग्स का मामला बहुत सारा आम हो जाएगा. ये सिर्फ इब्तदाई सूरत हाल है अभी, आप इसको देखिए कि अगर इसको कंट्रोल ना किया तो ये किस हिसाब से बढ़ती चली जाती है.
नहीं, इस ये वाकई आपकी बात सही है और अलार्मिंग है.
इट इज अलार्मिंग.
तकरीबन चार पांच साल अगर आप पीछे चले जाएं तो ऐसी सिचुएशन कहीं नहीं होती थी।
डू यू थिंक कि पुलिस को इन लोगों को अरेस्ट कर लेना चाहिए?
बिल्कुल, देखें आपके शेल्टर होम खुले हुए हैं।
एग्जैक्टली।
अच्छा, फूड बैंक्स खुले हुए हैं,
आप शेल्टर होम्स को भी गोली मारे हैं। शेल्टर होम्स, मैं ये कहती हूँ अगर एक औरत के या मेरे अगर बच्चे हैं और अगर मेरी इनकम नहीं है तो मेरा ख्याल है मिनिमम 400-500 डॉलर पर चाइल्ड बेनिफिट आता है अगर आपकी इनकम जीरो है। देन इफ यू आर अ सिंगल मदर, आपको सिंगल मदर का बेनिफिट अलग मिलता है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको लो इनकम हाउसिंग स्कीम्स अलग आपको मिलती हैं। तो उसके फिर इन तमाम चीजों के होने के बाद मेरा और कोई कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न
इस बेस पे तो पुलिस को एक्शन लेना चाहिए।
और मेरा कंसर्न ये है कि अगर ये बैगिंग को हम मुसलमान क्या करते हैं, हमने सर जिस दुनिया में बिड़ा कर रख, मैंने और आपने, हम मुसलमानों ने ये किया कि जी उसने तो मुसलमान हूं ना, उसने मेरे से मांगना शुरू किया, मैंने उसको दे दिया। मगर वी आर मूविंग टूवर्ड्स प्रोस्टिट्यूशन, वी आर मूविंग टूवर्ड्स ड्रग सिस्टम, वी आर मूविंग टूवर्ड्स चोरियां एंड रॉबरीज की तरफ, एंड वी आर मेकिंग दिस सिस्टम बैड इन द लॉन्ग रन। थैंक यू वेरी मच।
मैं एक आपको दो मिनट आप मुझे दे दें, एक वाक्य सुना के मैं बात को खत्म करता हूँ। कराची में मेरे घर के सामने एक साहब अपने घर के बाहर अफ्तार करवाते थे और बहुत बड़ा दस्तरखान लगता था और उनके घर के सामने बहुत बड़ी दुकानों की मार्केट। तो पहली रमजान को उन्होंने जब वो बनाया तो मेरे घर पे भी उन्होंने दिया, तो मैंने रख लिया, पहले रोजा था। तो दूसरे दिन वो फिर उनके घर से वो लेके आया तो मैंने कहा भाई पहली दफा तो आपने दे दिया ना, ठीक है चले मैंने ले लिया, लेकिन मैं साहिब हैसियत हूँ, मैं अपने घर का इफ्तार कर सकता हूँ। आप जो ये तीन आदमियों की चीजें ले आए मेरे घर पे तो ये बाहर रखे जहाँ आप दूसरों को खिला रहे हैं।
एग्जैक्टली।
अच्छा, दूसरी चीज, अब वहां पे मैंने देखा कि जो हमारे घर के वो सामने एक दुकानदार, जो दुकानें खुली हुई होती हैं रोती हैं, जो 25,000 रुपए किराया दे रहे हैं दुकानों का, वो सबसे पहले बैठे हुए। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई तुझे, तू 25,000 रुपए दुकान का किराया देता है अपना, तुझे शर्म नहीं आती कि तू यहाँ सबसे पहले तू आके बैठा हुआ?
Yeah.
तुझे तो खुद इनके साथ पैसे देने चाहिए कि ठीक है जी, जहाँ अगर आप एक देख कर रहे हैं तो मेरे पास से भी पैसे ले, अब दो देके कर दो। हमें इन चीजों से निकलना पड़ेगा, हकदार को हक देना पड़ेगा। इस हकदार में और ये जो नाइंसाफी हो रही है ना, उसके चक्कर में गरीब जो है ना बेचारा वो पिछड़ा, जो शरीफ हैं सफेद पोश हैं वो बेचारे एक वक्त की रोटी या पानी पी के सो रहे हैं, लेकिन जो नाजायज जिस चीज को यूज करने वाले हैं वो उससे फायदा उठा।
बहुत शुक्रिया।
सारे बेनिफिट यहाँ से ले रहे हैं और उसके बाद बैगिंग भी कर रहे हैं। ये हकूमत को, मैं समझता हूँ हमारी हकूमत को, हमारी पुलिस को यहाँ के एक्शन लेना चाहिए कि जब आप सब कुछ फराहम कर रहे हैं तो फिर मैं नहीं समझता कि कोई जवाब बनता है कि आप ये सब कुछ करें।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा कंसर्न ये है कि मैं अगर यहाँ पे आई हूँ, ये सिस्टम को करप्ट ना होने दिया जाए। मेरी रिक्वेस्ट है कि हर इंसान अपने तई अपना रोल जरूर प्ले करे। थैंक यू वेरी मच मंजू भाई।
आखिर में ये बता दें कि शाहीन टिक्के पे रमजान खत्म हो गया है, अब वहाँ रेगुलर खाना शुरू हो गया।
आई लव यू, थैंक यू वेरी मच। मंजर भाई, दिस इज मी, अब मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। आपकी कॉल आई और मेरी कॉल्स तीन चार आई थी जो कि जाती रही। एक बहुत खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट आपके लिए छोड़ती लगाने लगी हूँ, गीत बहुत खूबसूरत है, आप इस गीत को एंजॉय कीजिएगा। स्टूडियो का नंबर 4166201778, आपने पहचानना ये गीत कौन सा है। ठीक है, चलिए साहब, देखते हैं आप पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते। ठीक, I'm not afraid to die. जाफरी साहब जिंदाबाद, आपने तो पहचान लिया, आपने पहचान लिया कौन सा गाना है। जी अस्सलाम वालेकुम जी।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
ईद मुबारक आपको।
वसीम भाई कैसे हैं आप? ईद मुबारक। थैंक यू।
मैंने ये बताना था, ये अरमान का गाना है, अकेले न जाना।
बहुत शुक्रिया वसीम भाई, और आप और भाभी को अल्लाह ताला जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल।
बस गाँव में याद रखें।
थैंक यू, थैंक यू इरफान भाई। मैं अकेली हूँ ना, आई डोंट नो हाउ टू टेल ऑल दीस कॉल्स। बहुत शुक्रिया इरफान भाई। जाफरी साहब आपने पहचान लिया कि ये गीत कौन सा है। वसीम भाई आपने भी कहा कि फिल्म अरमान का ये गीत है। जाफरी साहब लगता है आप भी बड़े गाने सुनते हैं, मगर अब पहचानिए ये गीत कौन सा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा गीत है ये?
है कि मानता नहीं।
I love you, thank you very much, thank you very much. जी अस्सलाम वालेकुम।
हाँ जी सत श्री अकाल जी।
सत श्री अकाल जी।
हाँ जी ये भाई उन्होंने दस्ता पहला।
आपका नाम क्या है?
तेजिंदर जी,
दिल है के मानता नहीं।
बिल्कुल वही है जी, वही है जी।
जीते रहे आप, बहुत शुक्रिया। के मानता नहीं। जीशान आपने पहचान लिया, बिल्किस आपने पहचान लिया, गुरदेव जी थैंक यू वेरी मच तुहाडी कॉल दा, तुसी भी पहचान लिया। एंड नाउ दिस सॉन्ग, लेट्स सी। Oh, السلام علیکم جی, کون سا گانا ہے؟
ہاں جی السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
ہیرو مووی دا جی ہے لمبی جدائی ریشما دا گانا.
بہت شکریہ. اگلی کال جی. السلام علیکم. اگلی کال جی. السلام علیکم جی.
ہاں جی السلام علیکم جی.
یہ کون سا گیت؟
ریشما دا جی لمبی جدائی.
بہت شکریہ بہت شکریہ. آئی لو یو جی. السلام علیکم جی. کون سا
بتا دیا اسی وقت ملا دی تھی.
اچھا نہیں یہ غدر ہے, سب نے غدر کیا. نہ صدقے جاواں سارے نے غدر کیتا. جب اس گیت کا شروع کے بول آئے تھے نا تو کوئی نہیں پہچان سکا تھا. جہاں پہ آیا نا اس کی میوزک کی وہ ٹون آئی کہ چار دنوں کا پیار ہو رہا, اتنے ساری کالاں بجیا.
پہلے کرنا تھا شیر جب کہا تھا تو بند کر دینا تھا.
آئی تھینک یو ویری
مچ. یہ پورا گانا نہیں, شیر جب اس نے کہا تھا تو آپ نے بند کرنا ہمیں پہچان.
اگلی دفعہ یہ کر لوں گی, آپ فکر نہیں کریں.
بالکل.
آئی لو یو. تھینک یو. اس کے ساتھ گانا گانا مت بھولیے گا.
زبردست سیل ملٹن میں. جی ہاں, ہالٹن فرنیچر اینڈ فلورنگ,
جہاں ملے گا آپ کو نیم برانڈ فرنیچر ایشلی پر 50% آف. جی ہاں, میٹریسز بھی اپ ٹو 50% آف. سوفا سیٹ کے ساتھ کمفرٹیبل فری, بیڈ روم سیٹ کے ساتھ میٹرس فری. لیمینیٹ فلورنگ سٹارٹس فرام $29, ہارڈ ووڈ فلورنگ سٹارٹنگ فرام $389, کارڈز کاؤنٹر ٹاپ سٹارٹنگ فرام $39 پر اسکوائر فٹ انسٹالڈ.
545 مین اسٹریٹ ایسٹ ملٹن, 905-875-2228.
انشور پرو فائنینشیل سروس سے فضل بتو, جن کا ہے 27 سال سے لائف انشورنس انڈسٹری کا ایکسپیرینس. آج کل کے دور میں تو کچھ بھی فری نہیں ملتا, ایون مشورہ بھی. سوال چھوٹا ہو یا بڑا, آپ کال کر لیجئے, مشورے کی کوئی فیس نہیں. چاہے لینی ہو لائف انشورنس, کریٹیکل ڈسیبلٹی, ٹریول اور ادر انشورنس, ٹیکس پلاننگ اور ریٹائرمنٹ پلاننگ کے لیے دیر نہ کریں کہ اس سے پہلے دیر ہو جائے. فضل بتو کو کال کر لیجئے 647-286-4285.
All Debt Solutions and Consulting Services. 416-671-0577. Financial problems? Stop worrying and start living. Debt-free life. Visit today to your convenient location. Toronto, Scarborough, Richmond Hills and Mississauga. Call now. 416-671-0577. Live a happy debt-free life. All Debt Solutions and Consulting Services.
ہیرا ٹریول, دنیا میں کہیں بھی ٹریول کرنا ہو, پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا, تمام ایئر لائنز سے ڈیل کرتے ہیں. آئیٹا اپروڈ, ٹورانٹو کی سب سے پرانی اور قابل اعتماد ٹریول ایجنسی. سستے اور پکے ٹکٹ کے لیے سفری سہولتوں کی یقین دہانی, پروفیشنل سروس. ہیرا ٹریول کسی بھی ریٹن پرائز کو بیٹ کریں گے. 416-255-5566. 416-255-5566. ہیرا ٹریول.
Don't worry, 9054-54-2112, 905-454-2112. 905-454-2112. 905-454-2112. 905-454-2112. 905-454-2112. 905-454-2112. 905-454-2112. 905-454-2112. 905-454-2112. 905-454-2112. 905-454-2112. 905-454-2112. 905-454-2112. 905-454-2112. 905-454-2112. 905-454-2112. 905-454-2112. 905-454-2112. 905-454-2112. 905-454-2112. 905-454-2112. 905-454-2112. 905-454-2112. 905-454-2112. 905-454-2112. 905-454-2112. 905-454-2112. 905-454-2112. 905-454-2112. 905-454-2112. 905-454-2112. 905-454-2112. 905-454-2112. 905-454-2112. 905-454-2112. 905-454-2112. 905-454-2112. 905-454-2112. 905-454-2112. 905-454-2112. 905-454-2112. 905-454-2112. 905-454-2112. 905-454-2112. 905-454-2112. 905- Africans, cricket event has begun. Yes, ICC Cricket World Cup 2019 आपके लिए लेकर आए हैं क्रिकेट का सबसे बड़ा शो नॉर्थ अमेरिका में. हम आपको देंगे लेटेस्ट न्यूज, इनसाइड एंड आउटसाइड अपडेट, मैच एनालिसिस, टीम एंड प्लेयर स्टैट्स, ट्रिविया क्वेश्चन, सरप्राइज इंटरव्यू एंड एक्साइटिंग प्राइजेस. देखिए मैच पॉइंट रोजाना रात 9 बजे डॉक्टर अदनान के साथ सिर्फ ई आवाज टीवी पर, फेसबुक ई आवाज या फिर eawaz.com. आप सुन रहे हैं WTOR 770 साज आवाज ब्रॉडकास्टिंग सर्विस 24/7. हमारे रेडियो और टीवी की सर्विस के लिए विजिट कीजिए eawaz.com या डाउनलोड कीजिए फ्री ई आवाज ऑफिशियल ऐप. ई आवाज टीवी आपका अपना चैनल है. आप ई आवाज टीवी को तमाम IPTV बॉक्सेस पर फ्री देख सकते हैं. लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज ई आवाज. फीडबैक और एडवर्टाइजमेंट के लिए कॉल कीजिए
6478 9 8 6 2 4 5 6 4 7 8 9 8 6 2 4 5.
Stop!
जलता होशाना गुंचा दिलों के शमल का इलाही तुझे वास्ता पंज जल का होशाना गुंचा दिलों के चमन का ये दामन हमारा मुरादों से भर दे ये दामन हमारा मुरादों से भर दे मैं सबके लिए ये दुआ मांगता हूँ करम मांगता
WTOR, Youngstown, Toronto, now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birash Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.
Face all over the place.
We're online 24/7. 24/7.